नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दरभंगा के शोभन में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला रखेंगे। कई रेल और अन्य परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। प्रदेश की चार विधानसभा सीटों बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम और बियाडा के बीच राज्य में औद्योगिक विकास के लिए हुआ समझौता। और हरिहर क्षेत्र का विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला आज से हो रहा है शुरू। देश विदेश से पहुंच रहे हैं साधु संत और सैलानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दरभंगा में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 25 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला रखेंगे। इसके परिसर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और आयुष ब्लॉक, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, रैन बसेरा और अन्य आवासीय सुविधाएं शामिल होंगी। श्री मोदी 13 योजनाओं के पूरा होने पर उन्हें देश को समर्पित करेंगे। इनमें बिदुपुर और सेमरिया आरओबी, बंदुगंज पुल, दरभंगा बाईपास रेल लाइन समेत अन्य योजनाएं शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि दरभंगा एम्स का निर्माण अगले 3 वर्षों में शोभन में किया जाएगा। इससे मिथिलांचल क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाएं पूरी होंगी। एक रिपोर्ट।
दरभंगा एम्स के शिलान्यास के साथ साथ प्रधानमंत्री उत्तर बिहार के लिए रेल और रोड कनेक्टिविटी, गैस परियोजना तथा जन औषधि परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जो विशेष तौर पर मिथिलांचल के विकास को गति देगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी सीमांचल की गलगलिया बहादुरगंज एनएच सेक्शन का उद्घाटन सहित 5,000 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वे रेलवे के माध्यम से लोगों तक सस्ती दवाएं पहुंचाने के लिए देश भर के 18 स्टेशनों पर पीएम जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ भी करेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, दरभंगा।
प्रधानमंत्री दरभंगा से ही बेगूसराय के बरौनी में इंडियन ऑयल के बिटुमिन उत्पादन इकाई का शिलान्यास करेंगे। इसके निर्माण पर 389 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि दरभंगा एम्स का निर्माण होने से राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। श्री चौधरी ने कहा कि दरभंगा बाईपास रेल लाइन के चालू हो जाने से उत्तर बिहार में विकास की रफ्तार तेज होगी और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में विकसित बिहार बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि दरभंगा में कई रेलगाड़ियों की शुरुआत आज से हो रही है, जिससे यात्रा सुगम और आरामदायक होगी। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि दरभंगा में एम्स के निर्माण से मिथिला के लोगों को बेहतर इलाज के लिए कहीं बाहर नहीं जाना होगा।
पूरा जो हम लोग मिथिला क्षेत्र मानते हैं, मिथिला नेपाल का तराई, इस सारे एरिया के लोगों को जो इलाज के लिए वो लोग जाते थे दिल्ली में के एम्स में या पटना में आते थे, खास करके दिल्ली एम्स में उन लोगों को काफ़ी समस्या होती थी एडमिशन में या इलाज कराने में। अगर लंबा इलाज हो तो और समस्या होती थी। अब ये सुविधा हो जाने से, जब अगले 3 साल में ये पूरा एम्स बन के तैयार हो जाएगा, ये सुविधा मिल जाने से वो अपने घर से आकर के इलाज करा के वापस जा सकते हैं।
दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा है कि दरभंगा एम्स के निर्माण से मिथिला के 8.5 करोड़ लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज का दिन मिथिला के इतिहास का एक ऐतिहासिक दिन है।
देशक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी दिन के 9 बजे प्रस्तावित एम्स स्थल पर आये, एम्सक शिलान्यास करा जा रहा है। ई सपना संपूर्ण मिथिला के सपना छल जे काल पूरा होम जा रहल हन और एक वास्ते हम लगातार 15 से लागल रहे 8.5 करोड़ मिथिला वासी के तरफ से प्रधानमंत्री के हम बधाई भी दमा चाहे छी।
प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों बेलागंज इमामगंज तरारी और रामगढ़ उपचुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शांतिपूर्वक जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतार देखी जा रही है। बुजुर्ग मतदाता पूरे जोश के साथ मतदान के लिए केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में भी मतदाता समूह में केंद्रों की ओर जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में 1,277 मतदान केंद्रों पर 12 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उपचुनाव में कुल 38 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इंडिया गठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, वहीं भाकपा माले 1 सीट पर मुकाबले में है। एनडीए खेमे से भाजपा 2 सीट पर जबकि जदयू और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा 1-1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी ने 2 जबकि जन सुराज पार्टी ने सभी 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। गया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इमामगंज और बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में मतदान शांतिपूर्वक जारी है। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
इमामगंज और बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया। मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह है। लोग कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के 317 मतदान केंद्रों पर शाम 4 बजे तक मतदान होगा। वहीं शेष 29 मतदान केंद्रों पर मतदान का समय शाम 6 बजे तक निर्धारित है। बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हो रहा है। अभी तक किसी प्रकार के असामाजिक गतिविधि की सूचना नहीं मिली है। आकाशवाणी समाचार के लिए गया से धर्मवीर भारती।
कैमूर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग और महिला मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं।
रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। गुलाबी ठंड के बीच मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचकर पहले मतदान बाद में जलपान के तर्ज पर कतारबद्ध होकर बारी बारी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। डीएम सावन कुमार, एसपी ललित मोहन शर्मा सहित जिले के वरीय पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मतदान केंद्रों पर पहुंचकर विधि व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कैमूर से श्रीकांत पांडे।
इधर भोजपुर के तरारी विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान जारी है। मतदान को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कई मॉडल बूथ भी बनाए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है। महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा देखी जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम NICDC और बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा के बीच एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर को अगले 4 साल में विकसित करने के लक्ष्य के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि इस समझौते से राज्य में औद्योगिक विकास के लिए नए युग की शुरुआत हुई है। इससे प्रदेश को औद्योगिक और आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। मंत्री ने कहा कि इस समझौते से राज्य में 1 लाख से अधिक नौकरियां युवाओं को मिलेंगी। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने केंद्र सरकार से देश में एक राष्ट्र एक बिजली दर लागू करने की मांग की है। नई दिल्ली में ऊर्जा मंत्रियों के एक सम्मेलन में उन्होंने यह मांग करते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से प्रदेश की लंबित परियोजनाओं को जल्द मंजूरी देने का अनुरोध किया। श्री यादव ने कहा कि राज्य में बिजली के क्षेत्र के कई कार्यों का निरीक्षण अन्य राज्यों के अधिकारियों ने किया है। सारण जिले के हरिहर क्षेत्र का विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला आज से शुरू हो रहा है। मेले में सांस्कृतिक और मनोरंजन के कार्यक्रम आकर्षण के केंद्र रहेंगे। राज्य सरकार ने इसे राजकीय मेले का दर्जा दिया है। मेले का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा संयुक्त रूप से करेंगे। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से मेला क्षेत्र में पर्यटक ग्राम बनाया गया है, जिसमें विदेशी मेहमानों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 6 स्विस कॉटेज बनाए गए हैं। सैलानियों की सहायता के लिए गाइड तैनात किए गए हैं, जो लोगों को मेले की महत्ता की जानकारी देंगे। इसके साथ ही पर्यटकों के लिए स्पेशल टूर पैकेज की व्यवस्था भी की गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि मेला क्षेत्र में 8 अस्थायी चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के माध्यम से मेला क्षेत्र को 8 वार्ड में बांटकर प्रत्येक वार्ड में एक एक पशु चिकित्सालय कार्यरत किए गए हैं। उद्योग विभाग के माध्यम से 21 विद्याओं के 63 शिल्पकार और बुनकर अपनी कलाकृति का प्रदर्शन करेंगे। राजगीर में खेली जा रही महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता के एक रोमांचक मुकाबले में कल मेजबान भारत ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हरा दिया। भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी दीपिका कुमारी ने 2 और संगीता कुमारी ने 1 गोल किया। इधर थाईलैंड और जापान के बीच मैच 1-1 से ड्रॉ हो गया। वहीं एक अन्य मुकाबले में चीन ने मलेशिया को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से पराजित कर दिया। अंक तालिका में चीन ज्यादा गोल के साथ 6 अंक लेकर पहले स्थान पर है, जबकि भारत 6 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर और जापान 2 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। आज विश्राम का दिन होने के कारण कोई मैच नहीं होगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार पूर्व मध्य रेल क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अध्यक्ष ने छठ पूजा के बाद भीड़ प्रबंधन और यात्री सुविधा सहित सभी प्रकार की तैयारियों की समीक्षा की। श्री कुमार ने सोनपुर रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया। सोनपुर रेल मंडल ने मुजफ्फरपुर और बरौनी सहित डिवीजन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने वाले सभी यात्रियों से धैर्य बरतने की अपील की है। सोनपुर मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारी रोशन कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि भगदड़ से बचने के लिए होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, सभी भीड़ भाड़ वाले स्टेशनों पर पर्याप्त सुविधाएं हैं और बड़ी संख्या में विशेष ट्रेन चलाई जा रही है।
जो हमारा 2 मुख्य स्टेशन है मुजफ्फरपुर और बरौनी, वहाँ से हम लोग रेगुलर बेसिस पे फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। मुजफ्फरपुर से हमारा अमूमन जो है 10 पेयर स्पेशल ट्रेन चल रहा है और बरौनी से भी हमारा जो है 12 स्पेशल ट्रेन चल रहे हैं। इसी सारे यात्रियों से हमारी अपील यही है कि टीओडी ट्रेन का यूज करें, जो शेड्यूल ट्रेन है उसके अलावा टीओडी ट्रेन जो नोटिफाइड है उसकी लिस्ट जो है हमारे सभी होल्डिंग एरिया में हमारी वेबसाइट से है। जो भी
मौसम विभाग ने कहा है कि 14 नवंबर से एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ठंड में बढ़ोतरी होगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि इस विक्षोभ के प्रभाव से सुपौल, अररिया और मधुबनी समेत हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने वायु प्रदूषण को बड़ी खबर बनाया है। अखबार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से जारी रिपोर्ट पर लिखा है, हाजीपुर देश का सबसे प्रदूषित शहर। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, 370 पर पाक की भाषा बोल रही कांग्रेस। दैनिक भास्कर ने पटना के आसरा गृह में 2 युवतियों की मौत पर लिखा है, आसरा गृह में खिचड़ी खाने से 2 युवतियों की मौत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दरभंगा के शोभन में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला रखेंगे। कई रेल और अन्य परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम और बियाडा के बीच राज्य में औद्योगिक विकास के लिए हुआ समझौता। और हरिहर क्षेत्र का विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला आज से हो रहा है शुरू। देश विदेश से पहुंच रहे हैं साधु संत और सैलानी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।